ओम शांति। आज की मुरली से राजा ही चाहिए तो बोलो, हिम्मत से नहीं बोल रहे, पवित्र बनो। और पवित्र बनने के लिए आत्माभिमानी। बहुत सुंदर गहरा कनेक्शन दोनों का। और वरदान में संपूर्ण बनने के लिए सभी तरह की अधीनता से मुक्त हो जाओ। आज इन पे चर्चा करेंगे। स्लोगन भी किसी को याद है? हाँ, श्रीमत है लगाम तो मन का घोड़ा भागेगा नहीं, अनकंट्रोल नहीं होगा। सोल कॉन्शियस इंग्लिश का शब्द है, जानते हैं ना सभी इसका अर्थ? आत्माभिमानी, सोल कॉन्शियस। सोल कॉन्शियसनेस क्या है? देखो, देवताएं भी आत्माभिमानी हैं। उन्हें ये ज्ञान नहीं है कि आत्मा क्या है, कहाँ से आई है आत्मा का। जो ज्ञान हमें है वो उनको नहीं है, फिर भी वो आत्माभिमानी है। क्यों? क्या है उनके पास? नहीं, देवताओं के साथ क्या है? और आत्मा के जो सातों गुण हैं, वो वहाँ हमारे जीवन में हैं। यहाँ उनको लाने का हमें पुरुषार्थ करना है। तो ऐश्वर्यी होने से और योग लगाने से हम इन गुणों के स्वरूप बनते जाएंगे। आप मुरलियों में ध्यान दें, योग लगाते लगाते तुम आत्माभिमानी हो जाते हो। अशरीरी होते होते इसे एक दूसरा फायदा होता है, जो बहुत बड़ा फायदा है। अशरीरी होने दो बातें हो गई, अशरीरीपन और आत्माभिमानी स्थिति। अशरीरीपन का अभ्यास हम रोज करेंगे, हर समय कर सकते हैं, और उससे चलते चलते हम आत्माभिमानी बनते जाएंगे, यानी आत्मा अपने सभी गुणों को धारण करती जाएगी। आत्माभिमानी बनते बनते सभी ख्याल करें, इससे हमें क्या क्या फायदे हैं बोलो। इसे फायदे हैं हमें, टकराव नहीं होगा, थोड़ा और नजदीक आ जाए, बिल्कुल पहले पहले फायदे। देवान छूटता जाएगा, पवित्रता बढ़ती जाएगी, दैवी गुण भी आएंगे। हाँ, और थोड़ी गहराई से हम आपको इसमें ले चलते हैं। जिन्होंने लंबा काल शरीरी होने की प्रैक्टिस की, सिंपल, मैं आत्मा, ये मेरा शरीर, दोनों अलग, मैं आत्मा इस देह में अवतरित हुई हूँ, ये प्रैक्टिस, उन्हें जब शरीर का कुछ भी कष्ट होगा तो आत्मा को बहुत पीड़ा नहीं होगी। ध्यान देंगे इस बात पर, प्रैक्टिकल हो जाएगा, क्योंकि आत्मा शरीर से डिटैच होती रहती है, तो उसके दुखों से, उसकी जो बैड फीलिंग है, उससे भी डिटैच रहेगी। और दूसरा बड़ा फायदा होगा, व्यर्थ संकल्प स्वतः ही शांत रहेंगे, रुचि नहीं होगी, आत्मा गहन शांति में रहने लगेगी। बाकी सब आपने जो बताए, प्योरिटी बढ़ेगी, कर्मेंद्रियों का आकर्षण, उनका रस भी खत्म होगा, क्योंकि ये रस ही सबसे बड़ा रस होगा। सोल कॉन्शियस स्थिति, आत्माभिमानी स्थिति, थोड़ा सा बढ़ा देंगे वॉल्यूम, जरा सा, सोल कॉन्शियसनेस। और सभी को ये प्रैक्टिस रोज करनी है। आज सोने समय से कल उठते ही और फिर दिन में एक दो बार या शाम को। आत्मा के सात गुण है ना, मैं आत्मा ज्ञान स्वरूप प्रेम सुख शांति आनंद पवित्रता। एक एक गुण को स्वीकार करेंगे। ज्ञान स्वरूप का अर्थ है संपूर्ण सत्य ज्ञान हमारे पास है, हम जीवन में उसको अपनाते जाते हैं। ज्ञान का प्रकाश हमारे पास आ गया है, भटकन अंधकार समाप्त हो गया है। इस ज्ञान की हमें द्वापर युग से ही तलाश थी। दुख शुरू हुआ, थोड़े बहुत विकार हुए, ज्यादा नहीं था कुछ भी, तो सत्य ज्ञान की तलाश प्रारंभ हुई, अवाके पूर्ण हुई। गुरुओं ने शास्त्रों ने थोड़ा थोड़ा सिखाया, अवाके पूर्ण हुई, तो संपूर्ण ज्ञान का प्रकाश मेरे पास है। आत्मा शांत स्वरूप है। अब इसको दूसरे रूप में अभ्यास करेंगे, मैं आत्मा शांत हूँ, स्वीकार करेंगे। शांति मेरा स्वभाव है, शांति मेरी नेचर है, मेरी शांति को कोई भी नष्ट नहीं कर सकता। अपने को ये दृढ़ संकल्प देंगे, शांति मेरा श्रृंगार है, ये मेरे गले का हार है, इसे कोई मुझसे छीन नहीं सकता। हमेशा ध्यान रखेंगे ज्ञान और योग के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए और अपने जीवन को बहुत श्रेष्ठ बनाने के लिए चिंतन बहुत जरूरी है। बिना चिंतन के अभ्यास भी सूखे हो जाते हैं। भाई हमारे कह रहे थे कई लोग योग बहुत करते हैं लेकिन फटाफट लड़ाई कर लेते हैं, अगर बोलने का मौका मिले तो उल्टा सुल्टा सब बोल देते हैं। क्यों ये होता है? योग तो बहुत कर रहे हैं क्योंकि चिंतन नहीं। ये ऐसे ही हो जाता है जैसे किसी ने अपने पर्स में 1000 रुपए रख दिए लेकिन बंद कर दिया हो, अब 10 रुपए की जरूरत है, वो बंद है, केवल 10 रुपए। सिर दर्द हो रहा बहुत तेज, 5 गोली लेनी है, 10 रुपए की आएंगी, लेकिन लोक में है पैसे, चाबी खो दी है। ऐसे ही हो गया, योग से शक्तियां आ गई, वो आत्मा में है अंदर, लेकिन उनका यूज, उनको एक दिशा मिल जाए, उनको एक राह मिले, वो चिंतन से होती है। तो इस तरह चिंतन करेंगे आप, मैं आत्मा शांत हूँ तो मेरी शांति मुझसे कोई छीन नहीं सकता, मेरी शांति मेरी शक्ति है, मैं शांत हूँ, मुझसे शांति की किरणें फैलती हैं जो पूरे घर में फैलती हैं। चिंतन करेंगे, कभी भी कर सकते हैं। मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूँ, अर्थात मेरे अंदर बहुत प्रेम है, प्रेम से भरपूर हूँ मैं, मेरे अंदर प्रेम की कोई कमी नहीं है, मैं सारे संसार को प्रेम बांट सकती हूँ, तो मेरे पास घृणा का कोई स्थान नहीं, नफरत घृणा ईर्षा द्वेष इसकी कोई जगह नहीं मेरे पास। चिंतन करेंगे इस तरह, क्लियर है ना। मैं सुख स्वरूप हूँ, अर्थात मैं बहुत सुखी हूँ। मैं ये बात बहुत कहता हूँ सबको, सवेरे उठकर रात को कई बार सभी अपने से बात करेंगे, मैं बहुत सुखी हूँ, बाबा आपको पाकर मैं बहुत बोलो सुखी हो गई, मेरे सुख को मुझसे कोई छीन ही नहीं सकता, मुझे कोई दुखी कर ही नहीं सकता, मैं बहुत सुखी हूँ। ठीक है, हो जाओ जल्दी सेट और आगे हो जाओ, तो पीछे जो आएंगे फिर आपको हिलना नहीं पड़ेगा। ठीक है, मैं बहुत सुखी हूँ, मुझे दुख देने की किसी में शक्ति ही नहीं है। कई लोग कहते हैं ये व्यक्ति मुझे बहुत दुखी करता है, पर दुखी तो वो खुद होते हैं ना, वो चाहे तो दुखी ना हो। बाबा की इस पे मुरलियां हैं कभी, दुख तुम्हें तनिक भी स्पर्श न करे, मन तक भी नहीं, तब तुम सबके दुख हर्ता बन जाओगे। अब देख लो, सभी चेक करें, मैं आत्मा सुख स्वरूप हूँ, मैं पवित्र हूँ, स्वीकार कर लें मैं परम पवित्र हूँ। रोज स्वीकार करें अपने को, विकारों से मुक्त हूँ मैं आत्मा, निर्विकारी हूँ, किसी विकार का मेरे से कोई नाता नहीं, ये विकार तो रावण की संपत्ति हैं, मैंने इनको चुरा लिया था, अब वापिस कर देती हूँ। चुराया था या नहीं, हम सब ने माल रावण का कह दिया, मेरा गड़बड़ हो गई तो मेरे हो गए, अब मैं वापस करती हूँ रावण को, ले जाओ अपना माल, हमें नहीं चाहिए तुम्हारा, मैं पवित्र हूँ। अपने को ये संकल्प दें बार बार तो कभी भी ये पवित्रता अपनी ओर खींचेगी नहीं, हमारे अंदर पवित्रता का बल आ जाएगा, क्योंकि वो हमारी अपनी नेचर है, अपनी स्थिति है। ऐसे ही मैं आत्मा बहुत शक्तिशाली हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ, ये कहने से काम नहीं चलेगा, अब इसको अंदर ले चलो, मैं आत्मा बहुत शक्तिशाली हूँ। सब विचार करेंगे मेरे पास सारी ईश्वरीय शक्तियाँ हैं, चिंतन में लाओ, बाबा ने मेरे सिर पर हाथ रखकर मुझे सारी शक्तियां दे दी हैं, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, मैं कमजोर नहीं, मैं डरने वाली नहीं, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। तो शक्तियां जागृत रहेंगी। संकल्प कर दें, दो संकल्प, मैं माया से भी अधिक शक्तिशाली हूँ, समस्याओं से भी अधिक शक्तिशाली हूँ, तो शक्तियां काम करने लगेंगी, माया को और परिस्थितियों को नष्ट करने लगेंगी। ये चिंतन करना है, मैं आनंद स्वरूप हूँ, बहुत खुश हूँ, आनंद को लोग कम समझते हैं, मैं बहुत खुश हूँ, मेरी खुशी को कोई छीन ही नहीं सकता, मेरी खुशी पर मेरा अपना अधिकार है, ये खुशी मुझे स्वयं भगवान से मिली है, ये मेरा बहुत बड़ा खजाना है, ये मेरा है, छोटी बातों में मैं अपनी खुशी को खो नहीं सकती। संकल्प करो तो चिंतन हमारे स्वरूप का निर्माण करेगा, ये होगी आत्मभिमानी स्थिति। शरीर और आत्मभिमान, ठीक है, इससे हमारी प्योरिटी बढ़ती जाएगी आपे ही। देखो आप सबको स्पष्ट हो, बाबा ने हम सबको पवित्र जीवन दिया है, पवित्रता सन्यासियों ने भी अपनाई थी, अभी भी अपनाते हैं। बाबा ने उस दिन का अगर शंकराचार्य ना आता तो भारत विकारों की अग्नि में जल के भस्म हो जाता, तो सन्यास ने भी भारत को पवित्रता दी। लेकिन बहुत सारे सन्यासी आजकल पवित्रता को अपना नहीं पाते, इसलिए उन्होंने एक नियम बना दिया था, उस नियम का आपको पता हो कि ब्रह्मचर्य काल एक काल होता है उनके यहाँ, जब वो स्टडी करते हैं, जब वो कुछ साधनाएं करते हैं। जब कोई व्यक्ति संन्यास लेता है और किसी आश्रम में रहता है तो एक समय उनका ब्रह्मचर्य का समय है, जब वो सफेद कपड़े पहनेंगे, खान पान उनका बहुत कंट्रोल रहेगा, सब अच्छी धारणा अपनाएंगे। फिर क्या मान्यता हो गई कि जब संन्यास ले लिया तब तुम फ्री हो, पवित्र रहो या न रहो, यहां हो गई गड़बड़। ये जो सिद्धांत बनाया और ये बनाया बाद में आचार्यों ने, जब उन्होंने देखा ब्रह्मचर्य रहना कठिन काम है, बाबा ने इसको सरल क्यों कर दिया? यही तो जो आज हमें आत्मविमानी होने का ज्ञान देकर, हमें योग सिखाकर, ये वहां नहीं है। शास्त्रों में आत्मा का ज्ञान भी क्लियर नहीं है, उसको बड़ा जटिल बना दिया है, वो सिंपल ज्ञान नहीं रहा जैसे हमारे लिए है, मैं आत्मा हूं। एक लाइन भी पूरी नहीं हुई, आधी लाइन में ही हो गया, ये शरीर है, मैं आत्मा यहाँ बैठी हूँ। वो ज्ञान वहां नहीं है, उसको बड़ा जटिल बना दिया, ये है ये है, ये नहीं है ये है, सूक्ष्म शरीर में है, सूक्ष्म शरीर ऐसा होता है वैसा होता है, इतना जटिल बना दिया कि लोग सोचते हैं छोड़ो कुछ भी हो हमें क्या लेना देना। होता है ना प्रैक्टिकल कोई चीज समझ में ना आ रही हो, कहेंगे छोड़ो इसमें दिमाग खराब करने से क्या फायदा, संन्यास लिया था सुख शांति के लिए, नई समस्या खड़ी हो गई, छूट गया ना सब कुछ। तो बाबा ने सबको सरल कर दिया है, तो सभी इस पे बहुत ध्यान देते हैं, देना है सबको। और अब दूसरी बात पर भी गुह्य चिंतन कर लें, राजा ही चाहिए तो पवित्र बनो। केवल पवित्र आत्माओं को ही राजा ही क्यों मिलेगी, बोलो और बोलो, ठीक बोल रहे और बोलो, प्रकृति जीत बन जाएंगे। राजाई को, सतयुग की राजाई को पवित्र आत्माएं ही संभाल सकती हैं। अगर वहां भी किसी अपवित्र को बैठा दिया जाए गड़बड़ हो जाएगी सारी, स्वर्ग स्वर्ग ही न रहेगा फिर। देखो एक चीज और होती है, आज किसी से चर्चा हो रही थी इसी पे, किसी को भी अधिकार मिलता है। मान लो आप अपने डिपार्टमेंट के इंचार्ज हैं, आपको थोड़े से अधिकार हैं, चार लोग आपके साथ काम करते हैं, अधिकारों का जो दुरुपयोग कर लेते हैं, अधिकारों का दुरुपयोग उस व्यक्ति को बहुत टेंशन में रखेगा, और जो चार काम करने वाले वो भी दुखी असंतुष्ट रहेंगे, और जो अपने अधिकारों को किसमें प्रयोग कर दे, नहीं किसमें प्रयोग कर दे, सुख देने में, दूसरों को आगे बढ़ाने में, उनका भला करने में, वो महान पुण्य आत्मा। हमें सीखना है ये, ऐसे ही राजा। अभी राजा को अधिकार होते थे पूरे, आजकल के तो अधिकार कुछ भी नहीं है, राजा जिसको चाहे फांसी पर चढ़ा दे, ऑर्डर कर दे, किसी का भी सब कुछ हड़प ले, जो चाहे कर दे। जिस राजा ने अधिकारों का दुरुपयोग किया उसकी राजाई गई, जिसने अपने अधिकारों से सुख दिया उसकी राजाई चली और नाम हो गया। मैं एक राजा की कहानी पढ़ रहा था गुजरात के, उसको केवल 20 गांव थे राजा राज के लिए, अंग्रेजों ने गुजरात को बहुत बांट दिया था। पता गुजरात में कितने राजा थे, किसी को नहीं पता होगा, यहाँ अकेले गुजरात में 600 उन्होंने बांटा हुआ था, ताकि शक्तिशाली न रहें, आपस में भी लड़ते रहें, हमारी ओर न देखें, नहीं तो शक्तिशाली होते तो युद्ध कर सकते थे ना अंग्रेजों से। तो 20 गांव का राजा था वो, कहीं जैतपुर के आसपास की ये बात है। वो अपने घर में, छोटा सा महल था उसको, उसमें रहता ही नहीं था, सारा समय बाहर सबको मदद करने के लिए, किसी के भी कुछ कष्ट हो उसको निवारण करने के लिए, बड़ा नाम हुआ उसका। ऐसे राजा जिनका अपना जीवन अधिकार दूसरों के लिए है। तो जो इन्होंने बात कही, अगर कोई अपवित्र बादशाह को सतयुग में बैठा दिया जाए तो वो अपने अधिकारों का मिसयूज करके स्वर्ग को जल्दी ही नरक में बदल देगा, इसलिए वो उनको वहां प्रवेश ही नहीं है, प्रवेश करने की स्वीकृति ही नहीं है। केवल बहुत पवित्र आत्माएं जो सचमुच राजा बन जाते हैं। किसके राजा? स्वयं के राजा। ऐसी पवित्र आत्माएं, देखो पवित्रता की डेफिनेशन बहुत गहरी होती जाती है, ऐसी पवित्र आत्माएं जिनका मन सभी के लिए निर्मल निश्चल परोपकार से भरा हुआ हो, जिनके मन में सभी के लिए सुख देने की, आज भी था ना रहम, रहम नेचुरल हो, नेचुरल रहम, जो अपना भी कुछ न देखें, अपना भी सब कुछ दूसरों की सेवाओं में लगा दें, ऐसी पवित्रता जिसमें चित्त बिल्कुल निर्मल सुखदायी, किसी के लिए नफरत बदले की भावना, इसने मुझसे ऐसा किया था इसको सिखाऊंगी, ये सब नहीं, ये पवित्रता के विरुद्ध है। सिखाऊंगी नहीं भी तो मन में चलता रहता है, इसने मेरे से ऐसा किया, इसने ऐसा किया, ये भी संपूर्ण पवित्रता नहीं कहलाती, क्योंकि संपूर्ण पवित्र आत्मा बहुत शक्तिशाली हो जाती है, उसे ये सब बातें छोटी लगती हैं। अब अगली बात पर आ जाएं, हमें किसी के भी अधीन नहीं होना है। हम हैं कौन? अधिकारी। उत्तराधिकारी भी हैं लेकिन अधिकारी हैं। किस किस के अधिकारी हैं एक लिस्ट बना लो, पहले बहनें बताएंगी। ठीक बोल रहे हैं। आप भाई बोले? और पीछे वाले बोलो, आपने सुना नहीं जो इधर बोला गया, इसलिए पूछते हैं, रिपीट भी हो तो कोई बात नहीं। एक बात अभी नहीं आई, मन बुद्धि के भी अधिकारी, स्वयं के भी अधिकारी, कर्मेंद्रियों के भी अधिकारी, स्वराज्य अधिकारी, बाबा की शक्तियों के अधिकारी, प्रकृति के भी अधिकारी, हाँ बाबा के भी अधिकारी, बाबा पर भी हमारा अधिकार है या नहीं? सोच लो अच्छी तरह, उस पर भी अधिकार है। बाबा तो कितना निरहंकारी बनकर आता है हमारे पास, बाबा माना स्वयं भगवान। कई लोग बाबा सबसे आजकल नाराज होते हैं कि बाबा बड़े बदनाम है ना दुनिया में, तुम लोग भी बाबा कहते हो, तुम्हारा बाबा पता नहीं कौन है, इसलिए हम बीच में बोल भी दें, जो स्वयं सर्वशक्तिवान है, जो निराकार है, देखो वो कैसा बन के आया, मैं तुम्हारी सेवा में आया हूँ। सोचो अपने बच्चों को कितना सम्मान देते हैं वो, मैं तुम्हारा श्रृंगार करने आया हूँ, तुम मेरी शरण में आ गए हो, मैं तुम्हारी सुरक्षा करता हूँ। ऐसा उसने कहा, जब भी तुम मुझे बुलाओ मैं तैयार हूँ तुम्हारे लिए, तुम्हें कहीं भी मदद चाहिए मैं हूँ, कनेक्शन जोड़ो और बुला लो। आता है या नहीं? अनुभव है ना, आता है, और इसके इतने अच्छे अनुभव करने हैं कि आने वाले बुरे दिनों में, दुनिया के लिए बुरे दिन आ रहे हैं, आते जा रहे हैं, कहीं भी गड़बड़ हो बाबा को बुला ले, आदत बनाए इसको सब, ऐसा ना भूल जाएं। मान लो आप कहीं अकेले हैं, सांप आ गया बड़ा भारी, माताएं तो कहीं डरेंगी सांप के नाम से ही। हाँ छिपकली की तो एक अच्छी बात सुना दूं, अभी कोई बहन मुझे बाहर मिली, कहा भाई जी एक प्रश्न पूछना है, छिपकली चूहे और काकरोच। अब मैं सोचा डरती होगी उनसे, मैंने कहा क्या बात है डरती हो? नहीं मैं उन्हें मार देती हूँ। मैंने कहा तुम तो शिव शक्ति हो रियल में, छिपकली को मार देती है क्या? मैं तो मार देती हूँ, चूहों को भी खूब मार देती हूँ। तो कहा ये पाप तो नहीं? अब ऐसे प्रश्नों का उत्तर देना थोड़ा मुश्किल काम होता है ना, पुण्य तो नहीं है? पुण्य तो नहीं है। मैंने कहा भगा दिया करो कि भागते नहीं है? मैंने कहा चलो मार दिया करो, साल में कितने मारती हो? मैंने पूछा। उसका पति कहता मैं इसे बहुत मना करता हूँ मारो नहीं, पर ये मार देती है। कहा तीन चार मारते हैं, ज्यादा नहीं पूरे साल में। मैंने कहा चलो ज्यादा तो नहीं है। मैंने कहा कहीं रोज का काम हो गया हो ये तो रोका जाए। तो हम सभी को बाबा अधिकारी बनाते हैं। अब एक एक बात पर सोचें, बहुत अच्छी चर्चा हो सकती है। इनमें से किसी भी चीज के हम अधीन तो नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, हम अपने ही किसी संस्कार के अधीन तो नहीं। अधीनता का अर्थ है वो चीज हमारी स्थिति को डाउन कर दे। मान लो फीलिंग का संस्कार, फीलिंग हमें बिल्कुल नष्ट कर दे, खुशी छीन ले, हम पुरुषार्थ भी न करें, उदास बैठे हैं, कोई कुछ कह गया है, कहने वाला कह के भूल भी गया, ये सारा दिन फीलिंग में परेशान बैठे हैं, तो क्या हुआ, फीलिंग के संस्कार के अधीन हो गए। चेक कर सकते हैं किसी भी संस्कार की अधीनता तो मुझे नहीं है। कौन कौन से संस्कारों की अधीनता होती है जरा एक 5-7 की लिस्ट बना लें। क्रोध के संस्कार की अधीनता, न चाहते भी आता रहता है, बुरा बोलने का संस्कार, कड़वा बुरा बोलने का संस्कार। और कौन सी संस्कार की अधीनता होती है, हाँ, जीभ का रस, खाने का संस्कार, खाने का संस्कार, चिंतन आदि अलग चीज है, खाने का संस्कार, रूसने का संस्कार, रूसना, व्यर्थ बातों में रहने का संस्कार। रूसने की बात जब कोई सुनाता है तो मुझे एक याद आ जाती है, अभी अभी घटना, एक बुजुर्ग माता आई जो दादी होगी, कहा भाई जी मेरे में एक संस्कार है बहुत बुरा, उसकी विधि बताओ, मैं रूस जाती हूँ। मैंने कहा तो तुम्हारे पोतरे तो मजाक करते होंगे, दादी रूस गई है। है ना, आश्चर्य की बात, कोई बड़ा व्यक्ति रूसने लगे, लेकिन वो उसके संस्कार के अधीन हो गई। मैंने उसको कुछ सिखाया, ये करो, बेचारी को फील होता था कि मैं बड़ी आयु की हो गई 60 साल की और मैं रूस जाती हूँ, बच्चे पोतरे सब मुझे थोड़ा वैसी नजर से देखते हैं, बोलते भी हैं, बच्चे तो बोल देते हैं ना, दादी रूस गई, दादी रूस गई है देखो, तो उसको लज्जा भी आती है, ज्ञान लिया हुआ है। संस्कारों की अधीनता नहीं, संस्कार हमारे अधीन हो जाएं, इसके लिए ये आवश्यक है कि हम बहुत अच्छा अभ्यास करें, मैं स्वराज्य अधिकारी हूँ, संस्कारों की मालिक हूँ, ये संस्कार मेरा नहीं है, संकल्प करो, मेरा संस्कार तो देवताओं का संस्कार है, ये संस्कार मेरे नहीं है, रिजेक्ट करो, समझ रहे ना, रिजेक्ट करो उन्हें, ये मेरा नहीं है, वो हटता जाएगा आपसे। मन, मन की अधीनता, ये तो सबसे बड़ी है और बुरी है, मन खींच लेता है आत्मा को, मन वही कराने लगता है जो वो चाहता है, मन के संकल्प बांध देते हैं हमें, स्थिति को बिगाड़ देते हैं, इसके लिए तो बहुत पावर चाहिए। अधीनता शरीर की, सोचो क्या हुआ इसका अर्थ है, आलस, देवान, आलस, विशेष रूप से ठीक बोला आपने, आलस। वो खान पान के संस्कार में एक और है, ज्यादा खाने का संस्कार, किसी में भी हो आलसी बनाएगा, आलस, इन्होंने कहा आलस का मूल कारण होता ही है ज्यादा खाना, या पाचन क्रिया ठीक न काम करना, हजम न होना, तो भारी करेगा, गैसेज हो जाएंगी, उससे हमारी ताकत कम होती है। ये सब जान लें, जो व्यक्ति ज्यादा खाता है वो मोटा तो हो सकता है पर वो कमजोर भी रहेगा, क्योंकि ज्यादा खाने से भोजन को पचाने के लिए शरीर को एक्स्ट्रा शक्ति लगानी पड़ेगी, थोड़ा कम खाने से वो कम भोजन शरीर को पूरी एनर्जी देगा। इसलिए जिनकी आयु बड़ी हो गई है, माताएं भाई बहुत बैठे हैं जो 60 साल के ऊपर आ गए हैं, उन्हें रात का भोजन कम कर देना चाहिए, हल्का, आधा कर दें तो बहुत अच्छा, तो अमृत वेला बहुत अच्छा होगा। वैसे तो सभी को थोड़ा सा कम कर देना चाहिए ताकि भारी ना हो, नहीं तो अमृत वेले पर इसका इफेक्ट आएगा ही। सबको अनुभव है, मुझे भी है, कल मैंने खाया ही नहीं था भोजन, उससे भी गड़बड़ हो गई। तो डॉक्टर कहते नहीं खाओ जरूर, सवेरे उठे तो शरीर सूखा हुआ, एसिड बन जाते हैं ना, उसका इफेक्ट हो जाता है बुरा। तो हमें ये खाने पीने की आदत की भी अधीनता ना हो कि शुगर है लेकिन जलेबी तो बहुत अच्छी बनी, वो भी भोग में बनी है। अब भोग को कैसे ना खाएं, दो दो मिल रही हैं, उस पे तो हमारा अधिकार है। अब खा तो लिया लेकिन जलेबी बहुत मीठी, शुगर बहुत हाई हो गई, डॉक्टर कहते कहां गड़बड़ की, ये अधीनता हो गई ना। और छोटी चीजों की अब चिंतन करेंगे, अधिकार है हमारा सर्व शक्तियों पर, अधिकार है हमारा बाबा पर, अधिकार है हमारा, बोलो किस किस पे बोला था ना, विश्व पर तो बाद में, इस संपूर्ण प्रकृति पर भी। ये बड़ी चीजें हो गई, अब इन तीनों चीजों पे चिंतन कर लें जरा। हाँ, मन बुद्धि तो है ही, शक्तियों पर, बाबा पर, प्रकृति पर। प्रकृति ने हमें दो युग से अपने अधीन रखा, वो नहीं दिया जो हमें चाहिए था, जो कुछ उसे देना था वो दिया, चाहे उसे मनुष्य को कष्ट हो या न हो, कहीं ना कहीं उसके जिम्मेदार मनुष्य स्वयं भी हैं। लेकिन अब हम प्रकृति की सेवा करके उसे अपने अधीन बनाते हैं। देखो, दो राजाओं की लड़ाई होती है, एक राजा दूसरे के अधीन कब हो जाता है, जब वो हार जाता है, यही है ना, जो जीत गया उसके दूसरा अधीन हो गया। अब हमें प्रकृति को अधीन बनाना है, तो इसको जीतना है हमें, और इसको जीतने का पहला कदम है यह जो देह प्रकृति है, हम इससे जब चाहें न्यारे हो जाएं, ऐसा रीरीपन, ये है प्रकृति पर विजय। बाबा ने बहुत पहले 69 की मुरलियों में ये सुनाया है, अस रत्नों का पहला आधार और पहला लक्षण होगा सेकंड में देह से न्यारे, सेकंड में न्यारापन। ये केवल ये नहीं होता मैं आत्मा हूँ, देह की फीलिंग ही समाप्त हो जाए, डीप साइलेंस के अनुभव में आ जाए हम, वो है देह से न्यारापन। वो शांति हमारी शक्ति बन जाए, वो है देह से न्यारापन। तो जितना जितना हम इस देह की प्रकृति के मालिक बनेंगे, ये मालिकपन हो गया ना, उतना उतना इस संपूर्ण प्रकृति के मालिक बन जाएंगे। दो युग तक हम इसके मालिक रहेंगे, तीसरा युग भी ये हमें सब कुछ प्रदान करती रहेगी। मन बुद्धि के मालिक वो हैं, सबसे पावरफुल बात जो आज तक मुरलियों में आई है वो आप याद रखेंगे, जो अपने मन बुद्धि को जब चाहे, जहां चाहे और जितना समय के लिए चाहे स्थिर कर सके, योग की सबसे पावरफुल स्थिति है, ये है मन बुद्धि के अधिकारी। इसकी हमें प्रैक्टिस करनी है, हमारी सबसे बड़ी साधना है ही बुद्धि की स्थिरता, एकाग्रता, ये बहुत बड़ी साधना है। मन बुद्धि भटकते हैं जहां तहां भटकते हैं, बिना मतलब भी भटकते हैं, आपको कोई काम नहीं, बैठे हैं शांत में तो भी क्या क्या सोचते रहेंगे, सांप ना आ जाए, पत्थर न गिर जाए, मुझे चोट न लग जाए, कल कुछ हो न जाए, सोचते रहेंगे, पास्ट की कुछ याद आ जाएगी, एकाग्रता करनी है तो हम मन बुद्धि के अधिकारी बन जाएंगे। बहुत बड़ी चीज है सर्व शक्तियों पर हमारा अधिकार। यदि कोई कहते हैं हम सहन नहीं कर पाते तो क्या माना जाएगा? अधीन है ना। और जिनमें सहन करने की ताकत नहीं होती उनकी खुशी उनकी स्थिति सदैव दूसरों के हाथ में रहती है। हैं सभी सहनशील या नहीं बोलो? कोई है कोई नहीं है, कोई 50% है कोई ज्यादा है। कैसे आएगी ये सहनशीलता बोलो? कैसे आएगी? ठीक बोल रहे। और प्रैक्टिकल रूप से रोज सवेरे कुछ दिन तक कर लें, कभी भूल भी जाएं तो कोई बात नहीं। मैं मास्टर सर्व शक्तिवान हूं, बाबा ने मुझे सारी शक्तियां दी हैं, इन सारी शक्तियों पर मेरा अधिकार है। ये अपने को जरा याद दिलाते रहें, फिर सहनशीलता मेरे अंदर है, उस पर भी मेरा अधिकार है, मेरे पास संपूर्ण सहन शक्ति है, मैं हर चीज को सहन कर सकता हूँ, हर परिस्थिति को, दूसरे के बोल को, गर्मी को, सर्दी को, सबको सहन कर सकती हूँ। संकल्प दें अपने को और एक नेचर बना दें, हर मौसम को भी एंजॉय करना है। ये नहीं बारिश आ गई दो चार दिन में तंग हो गए, क्या गंदा मौसम है, कपड़े भी नहीं सूखते, जहां तहां पानी भरा हुआ, गंदगी हो जाती है, मच्छर हो गए हैं, पता नहीं कब खत्म होगा, किसने बना दिए ऋतु पता नहीं, सोचते रहते हैं। फिर बरसात पूरी हुई सर्दी आ गई, बहुत ठंड है, बहुत ठंड, हम तो सहन ही नहीं कर सकते, ये ठंड पता नहीं कब जाएगी, परेशानी रहते हैं पता नहीं कब जाएगी। चलो गई, फिर गर्मी आ गई, हाय गर्मी, एसी के बिना रहा नहीं जाता, शांतिवन में बहुत गर्मी है वहां नहीं जाएंगे, ऊपर के कमरे भी यहाँ माउंट आबू में भी तप जाते हैं, गर्मी बहुत होती है, माताएं जो तीनों की छतों के नीचे रहती हैं, बड़ा मुश्किल है, पता नहीं ये गर्मी से कब पीछा छूटेगा, पसीना आ गया, बदबू हो गई, तो किसी भी ऋतु का आनंद नहीं। अपनी मन को मेंटेलिटी को चेंज करें। बरसात होने लगी, हा रिमझिम, क्या सुंदर मौसम है, इसकी तो इंतजार थी, बादल आ गए, फागी होती है आबू में, वाह सुख संवतन बना दिया बाबा ने, थैंक यू बाबा, कितने अच्छे हो आप, ऊपर जाने की बजाय ऊपर वाले को ही नीचे ले आए, कितना अच्छा हुआ, आनंद लो, सुख संवतन में है हम, हर मौसम का आनंद लो। ठंड आ गई, बॉडी के लिए वो भी जरूरी है, प्रकृति में जो चेंज होते हैं वो सब हमारे शरीरों के लिए जरूरी होते हैं। गर्मी आ गई, वो भी सृष्टि के लिए बहुत जरूरी है, हम गर्मी को सहन कर सकते हैं। ये संकल्प करते ही आपको गर्मी का इफेक्ट कम हो जाएगा, और आप ये सोचते रहे हाय गर्मी, बहुत गर्मी है, कैसे जिए इसमें, तो गर्मी ज्यादा लगेगी, होगा या नहीं? यही हर मौसम का यही है, इसलिए हर चीज को स्वीकार करने से हमारी सहन शक्ति जागृत रहती है, काम करने लगती है। तो सभी शक्तियों पर अपना अधिकार कर लें, और ये बहुत अच्छी तरह लंबे समय अभ्यास की जरूरत पड़ती है, दो चार दिन में नहीं हो जाता। मेरे पास सारी ईश्वरीय शक्तियां हैं, हैं या नहीं है ना? सबके पास तो सहन शक्ति है, कितनी है? माताएं कुछ बोल रही कुछ नहीं कि होता तो नहीं सहन, बहू बड़ा तंग करती है, सहन होता नहीं है। हाँ यही समस्या है, बहू सोचती है सास बड़ी तंग करती है, सहन करना बहुत मुश्किल है। हम क्यों ना अपने जीवन का नियम बना लें, न तंग होंगे न किसी को करेंगे। पर मनुष्य को पता नहीं चलता एक चीज के कारण, उस चीज पे सभी ध्यान दें। ये भी अधिकार की बात होती है। घर में जो बड़े होते हैं ना, वो समझते हैं ना हम अधिकारी हैं, तो दो छोटों को कुछ भी कहेंगे, डांटे डपटेंगे, कुछ गलती कर दी तो दस सुनाएंगे, क्योंकि ये उनका अधिकार है, ये अधिकारों का मिसयूज है। अब दूसरा व्यक्ति कब तक सहन करेगा? और जब ज्यादा हो जाता है तो लड़का अब डंडा लेके बाप के सामने, बहुत सता लिया मुझे अब नहीं। होता है या नहीं? दुनिया में यही तो हो रहा है, लड़ाई झगड़ा शुरू हो रहा है। और जिसको व्यक्ति को बहुत सहन करना पड़े, इस बात पर भी आप बहुत ध्यान देंगे, कोई व्यक्ति बहुत सहन करता रहे तो उसकी मेमोरी पावर वीक होती जाएगी। लेकिन अगर स्वमान के साथ सहन करेंगे, जो आज एक बात थी ना, रुहाव, रूहानियत, रुहाव, रुहाव बहुत बड़ी चीज है। रूहानियत तो हो गई आत्मिक स्वरूप में रहने से, रुहाव आता है स्वमान में रहने से। चेहरे पर देखो, रोब और रुहाव ये दोनों समान चीजें हैं। रोब हुआ क्रोध का हिस्सा और रुहाव हुआ स्वमान का हिस्सा। दोनों में चेहरे की पर्सनैलिटी प्रभावशाली रहेगी। लेकिन हमें रुहाव में रहना है तो सहन करने से, सहन करने का बुरा प्रभाव ब्रेन पर नहीं आएगा। नहीं तो सहन करते करते कई लोग को डिप्रेशन में भी आ जाते हैं। बहुत सहन किया जीवन में, खुशी चली गई, डिप्रेशन बढ़ता गया, तो कभी 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 ज्यादा सहन करना भी नहीं चाहिए। बोल दो कुछ थोड़ा सा, लेकिन अपनी स्थिति को संभालते हुए। ऐसे नहीं बोलो तो बोलते ही रह जाओ और स्थिति बिगड़ जाए। पर कभी कभी ऐसा होता है कि दूसरा व्यक्ति, क्योंकि हम चुप हैं इसलिए ज्यादा सताता है, तो ऐसे में थोड़ा सा बोल देना, थोड़ा स्थूल में भी सामना करने की शक्ति को यूज कर लेना, ज्यादा नहीं, स्थिति बिगड़ते हुए नहीं। ऐसे में दूसरा व्यक्ति भी ठीक होता है। जिसको बाबा कहा करते थे, आंख दिखा दो, ड्रामा कर दो, थोड़ा सा ड्रामा कर दो, इस अंदर नहीं, अंदर तक न जाए, लेकिन बाहर से रूप दिखा दे। जैसे माताएं बच्चों को भी दिखा देते ना, छोटों को थोड़ा ऐसे कर देंगे, बच्चे डर जाएंगे, ऐसा वैसा काम नहीं करेंगे। तो इसकी भी कहीं कहीं जरूरत पड़ती है। तो सभी अधिकारी चेक कर लेना, विशेष रूप से किसी संस्कार के हम अधीन तो नहीं। ऐसा नहीं रोज सवेरे उठते हैं और आलस कहता है सो जाओ, रोज योग करके क्या करोगे, सो जाओ, आलस के अधीन। तो चेक करेंगे और हर तरह की अधीनता को समाप्त करके क्या बनेंगे, अधिकारी। जो यहां अधिकारी, विश्व राज्य अधिकारी। ओम शांति।